हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 18 श्लोक संख्या 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम्, अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्व। आराध्यो भगवान् व्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा, पीतांबर दरुणबिंबफलधरोष्टा, पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् हरविंदनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जाने। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम्, गोपांगनाना चदुकूलचोरम्, अनेकजन्मा चितपापचोरम्, श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम्, चोराग्यतर्यं पुरुषं नमामि, श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం. భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద. శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణ కీ జై. పహలా స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రాహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ కో శాప్. आज सुत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं, मतलब एक भक्त के अंदर सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं. इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. वे कहते हैं, नानुदृष्टि करिम सम्राट सारंग इव सार भूक कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नानुदृष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नानुदृष्टि कलिं सम्राट సారంగ ఇవ సారభూక్ కుశలాన్ యాషు సిద్ధ్యంతి నేతరాణి కృతాని యత్. నాను దృష్టి కలిం సమ్రాట్ సారంగ ఇవ సారభూక్ కుశలాన్ యాషు సిద్ధ్యంతి నేతరాణి కృతాని యత్. शब्दात नानुद्वेष्टि करिम सम्राट. ना मतलब कभी नहीं, अनुद्वेष्टि ईर्ष्यालु थे. किससे? कलयुग से. कौन? सम्राट. सारंग इव सारभूक. सारंग कहते मधुमक्खियों की भांति यथार्थवादी. इव सदृश सारभूक मतलब सार को ग्रहण करने वाला. कुशलानी यानी शुभ वस्तुएं आशु शीघ्र ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं. न इतराणी, नेतराणी का मतलब होता है कभी नहीं, इतराणी मतलब अशुभ. कृतानि यत किए जाकर, यत यानी जितना. अनुवाद, महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है. वे यह बलिबांति जानते थे कि इस कलयुग में शुभ वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके. अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की. श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कलयुग अधम युग कहलाता है. इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं. अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी कार्य को वास्तव में करता नहीं तब तक वह उस पाप पूर्ण कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पाप पूर्ण कर्म की कल्पना से ही मनुष्य कर्म का भागी बन जाता था। इसके विरुद्ध इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए स्थान युक्त किए, उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और जनता को कली के पाश से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भी यह कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर हृदय में बंदी बन जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। बहुत ही सुंदर श्लोक आज हमें सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में आया था तो भी महाराज परीक्षित ने उन्हें दंडित नहीं किया, उन्हें अभय प्रदान किया। हालांकि महाराज परीक्षित सक्षम थे, उन्हें मार सकते थे, परंतु उन्होंने उनसे कोई द्वेष नहीं किया, उन्हें स्वीकार किया। ये सबसे बड़ा एक वैष्णव का गुण होता है कि हमारे पास चाहे कोई भी, माना वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते ना, उनके पास चाहे कोई भी जाता है, उनका एक गुण है ये होता है कि वो पीछे सुदुराचार, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो उसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने जब वो गए थे अमेरिका, जैसे कंडम सिटी में गए थे, तो वहां पर कोई हम सारे शुद्ध भक्त नहीं बैठे हुए थे जो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हो, पर स्त्री गमन नहीं करते हो या फिर गैम्बलिंग नहीं करते हो, सारे शुद्ध भक्त नहीं थे। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी एक क्वालिटी को देखा और वो क्वालिटी क्या थी कि वो सब श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास करते थे। वो मानते थे कि स्वामी जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। बस श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी इस क्वालिटी को देखा और उन्होंने उनको स्वीकार कर दिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसे लोग के साथ मैं रहूंगा, ये जो सारा दिन कितनी गंदी हरकतें करते रहते हैं। नहीं, उन्होंने उनको स्वीकार किया। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है वो देखते हैं, और यही कार्य कर रहे हैं महाराजा परीक्षित। महाराजा परीक्षित के लिए यहाँ पर बताया नानु द्वेष्टि, उन्होंने कोई द्वेष नहीं किया, कोई ईर्ष्या नहीं की। आज संसार में अगर हमारे साथ कोई होता ना, तो अगर हमारे साथ कोई भक्त होता है,
आजकल तो क्या होता है, हम भक्तों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। कितनी दुर्घटना है हमारे साथ, कितना दुर्भाग्य है कि वो भक्त होते हैं उनके अंदर भी हम कीड़े निकालते हैं, सोचते हैं ये भक्त ऐसे भक्ति कर रहा है, वो भक्त ऐसे, वो हजारों में से एक है। क्योंकि भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वः। जो मेरे पास आया है, जो मुझे सरेंडर कर रहा है, जो मेरी शरण में है, जो मेरा नाम जप कर रहा है, वो कोई साधारण नहीं है। और कह दिया साधु रेव समन्तव्य, उसे तुम्हें साधु मानना है, फिर भी हमारा मन इतना, बुद्धि इतनी अपवित्र है कि केवल अपवित्रता ही दिखती है। हम भक्तों में भी अवगुण देखते हैं, ना केवल अवगुण देखते हैं पर साथ क्या करते हैं, जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी वो क्या करती है, उसको अगर कहीं गंदगी दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो फूलों पर ही बैठ जाएगी, नहीं, वो गंदगी ढूंढती है कि कहीं से मुझे गंद मिले जहां पर जाकर मैं आनंद प्राप्त कर सकूं। तो उसी तरह से हमारा स्वभाव भी मक्खियों जैसा हो गया है। हम साफ सुथरी जगह पर भी, यहाँ पर जैसे बहुत साफ सुथरी चीजें रखी होंगी उनके ऊपर मक्खी नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ थोड़ा सा गंदगी होगी ना वहां पर जाके बैठेगी, क्योंकि उसे आनंद आता है। वही आजकल हम करते हैं, क्योंकि जहाँ पर गंद नहीं भी दिखता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी बुराई ढूंढने के लिए हम मक्खियों के जैसा स्वभाव रखा है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है, शुद्ध भक्तों की संप्रदाय में होते हैं तो हम उनके साथ ईर्ष्या नहीं करते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं भाई अच्छे अच्छे लोग हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन अब यही आनंद आदर और यही ईर्ष्या भाव खत्म हो जाता है जब हमारे ईर्ष्या भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है जब हमारे सामने कोई गलत व्यक्ति आता है, जैसे कोई अपराध करने वाला, कोई अपराधी सामने आता है, फिर तो हम उनको स्वीकार हृदय से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शुद्ध भक्त के विषय में, जो कि परीक्षित महाराज है, उनके विषय में कहते हैं नानु दृष्टि कलिम, ये कलिम सम्राट, ये कलयुग का जो कली जो है वो अपराधों का राजा है। अपराधियों का राजा होते हुए भी महाराज परीक्षित उनके साथ द्वेष नहीं कर रहे थे, उनके नानो द्वेष्टि, उनके साथ कोई भी द्वेष नहीं किया। किस प्रकार, सारंग कहते मधुमक्खी को, जिस तरह से मधुमक्खी जो है वो यथार्थवादी होती है, वो वास्तव में अच्छा अच्छा ढूंढती है। जैसे बहुत सारा कहीं पर गंद जमा हो लेकिन अगर कहीं पर कोई फूल का छोटा सा पौधा होगा तो मधुमक्खी उस फूल के ऊपर बैठेगी और उसमें से मधु चूसेगी, है ना। उस क्योंकि मधुमक्खी का स्वभाव अभी है मक्खी, वो भी मक्खी है, वो जो साधारण होती है वो भी मक्खी है। साधारण मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर है कि मधुमक्खी हमेशा फूलों का रस चूसती है और जो साधारण मक्खी होती है वो गंदगी के ऊपर बैठती है और वहीं पर आनंद प्राप्त करती है। मधुमक्खी को केवल पुष्प की सुगंध आकर्षित कर रही होती है। अब हमें अपने जीवन में लेना है कि हमें मधुमक्खी बनना है या मक्खी बनना है। अब देखना है, जब हमें दूसरों का अपराध नजर आता है ना, इसका मतलब ये है कि हम उसी गंदगी खाने वाली मक्खी की तरह हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित के विषय में कहा जाता है नानु दृष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक। सारंग यानी मधुमक्खी जो यथार्थवादी है, जो वास्तविक रस प्राप्त करना चाहती है, सारभुक सार को ग्रहण करने वाली है उसकी तरह है। तो मधुमक्खी भी क्या करती है, ऐसे आनंद नहीं आता उसे, वो भी ढूंढ रही होती है कि कहीं से मुझे कोई पुष्प मिले। मधुमक्खी के विषय में हम बचपन में पढ़ते थे कि मधुमक्खी जो होती है ना वो पूरे घर में, पूरे वन में ढूंढ रही होती है, जहाँ जो सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट पुष्प होता है ना उसके पास जाती है और उसका जो है ना रस निकालती है और उससे मधु बनाती है। तो इसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं ना वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा रस कहाँ पर है, जो सबसे ज्यादा रसीला है उसी के पास जाना है और वहां से रस निकालना है। जिस तरह से मधु एक माधव नाम है भगवान श्री कृष्ण का, यानी भगवान को भी मधु बोलते हैं, यानी कि मधु की तरह मीठे हैं भगवान। तो भक्त जानते हैं कि आनंद यदि कहीं पर है तो जहाँ पर भगवान है वहाँ पर है। तो भगवान कहाँ पर है? भगवान की कथाओं में है, भगवान के नाम में है। तो वो सदैव जो शुद्ध भक्त होते ना, वो भी सदैव मधु की तलाश में ढूंढ रहे होते। सुबह होते ही उनके कान, उनके नेत्र, उनकी जीभा तरस रही होती है कि कहीं से मुझे मधुसूदन का मधु प्राप्त हो। मैं जो वो मधुसूदन है, मधु राक्षस को मारने वाले माधव है ना, उनका आनंद प्राप्त हो। तो भगवान के चरणों का आनंद प्राप्त हो, मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, और साथ में मुझे भगवान की कथा का आस्वादन प्राप्त हो। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुकमुखादमृतम रवसौरुतम। ये जो शुक के मुख से निकला हुआ अमृत है, उस अमृत को चखने के लिए वो भक्त जो है वो सदैव लालायित रहते हैं कि कहीं से मुझे भगवान के लीलाओं के विषय में श्रवण करने को मिल जाए, कोई शुद्ध भक्त ऐसा मिल जाए जो मुझे भगवान के विषय में बताए। आप सबका तो दुर्भाग्य है कि आपको मुझसे सुनना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कितने महान हो जो श्रवण करते हो। लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये इच्छा करनी चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त के से हमें भगवान के इन शब्दों को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। यही एक शुद्ध भक्त की कामना होती है। शुद्ध भक्त ये मक्खियों की तरह भिनभिनाते नहीं है गंदी गंदी चीजों में कि उसमें क्या अवगुण है, उसमें क्या अवगुण है, उसमें क्या अवगुण है, वो देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि हमारे पास जो ये मनुष्य योनि का जो थोड़ा सा समय रह गया है, वो मुझे जाया नहीं करना है फिजूल बातों में, फिजूल चीजों में। मुझे अधिक से अधिक नाम स्मरण करना है, अधिक से अधिक कृष्ण कथा श्रवण करनी है, ताकि मैं जितना जितना भगवान के विषय में श्रवण करूंगा तभी तो भगवान के प्रति मेरा सुप्त प्रेम उजागर होगा। तो उसके लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि यस्यैव हेतु प्रियतेव को विदु। वास्तव में भक्त सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। न लभ्यते यत् भ्रमता उपर्यदा, जो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और ये भौतिक वस्तु, ये भौतिक व्यक्तियों की चर्चा, वो तो कहीं पर भी मिलेगी और उससे हमारा और भी भक्ति में उन्नति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति से गिराने वाली होती है भौतिक वस्तुओं की चर्चा। श्री रूप गोस्वामी अपनी किताब उपदेश अमृत में बताते हैं कि 6 चीजें जीवों को भक्ति से गिरा देती हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर् भक्तिर् विनश्यति। अत्याहार, अधिक जरूरत से ज्यादा खाने की या जमा करने की इच्छा, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का कठिन प्रयास करना, और प्रजल्प, ये प्रजल्प ही तो है जो हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं और दूसरों को पॉइंट आउट करके बताते हैं, देखो इसके अंदर ये बुराई, ये प्रजल्प हमें भक्ति से गिराने वाला होता है। और जनसंग से, जो भक्त नहीं होते ना, उनके साथ अगर हम बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, तो उससे भी हमारी भक्ति जो है वो भक्ति में उन्नति नहीं होती है, और भी हमारी भक्ति से गिरने लगते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मधुमक्खी की तरह सारभुक बनना है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी, नानुदोष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक। ये सारंग की तरह है, मधुमक्खी की तरह है, जो केवल रस को देखती है, जो केवल मधु को प्राप्त करना चाहती है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी केवल भगवान के चरणों के मधु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। हमें केवल श्रवण करना इसलिए नहीं है कि हमें पता चले कि उनके अंदर ये जो इतिहास में जो हमारे शुद्ध भक्त हुए हैं उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। हमें ये इसलिए श्रवण करना है ताकि हम भी अपने अंदर उन गुणों को विकसित करें। कब तक हम अपराधों की भावना देखकर इन भौतिक जगत में घूमते रहेंगे? कब तक हम मक्खियों की तरह गंदगी को अपना कर अपने जीवन को वेस्ट करते रहेंगे? इसलिए अब हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ताकि हम भौतिक वस्तुओं की गंदगी, भौतिक व्यक्तियों के अपराध या उनके जो उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको देखना छोड़कर मधुमक्खी की तरह सार ग्रहण करें, सार भुक। और महाराजा परीक्षित किसके अंदर अच्छाई देख रहे हैं? साक्षात कलयुग के अंदर। और उनको कलयुग के अंदर अच्छाई देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो बोल सकते भाई कलयुग तो अपराधों का घर है, इससे तो मैं कहीं पर रहने के लिए स्थान दूंगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग अच्छाई कब देखना पसंद करते? जब मजबूर हो जाते हैं भाई, और कोई रास्ता ही नहीं। जैसे हमारा किसी के साथ संबंध जुड़ जाता है, जैसे किसी के साथ विवाह हो गया, अब विवाह हो गया, दूसरा कोई विकल्प नहीं, रहना उसी के साथ है, तो फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, चार बुराइयां हैं तो कम अज कम एक अच्छाई भी है कि जो मैं कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है ना, एटलीस्ट कुछ तो उसके अंदर अच्छाई ढूंढते ताकि एडजस्ट करके जी लें कम अज कम। लेकिन महाराज परीक्षित को एडजस्ट थोड़े करना था, उनके अंदर सामर्थ्य था, तलवार उठा ली थी और उसको मार सकते थे, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने उनके अंदर गुण देखा, क्योंकि ये भक्तों का सबसे बड़ा गुण होता है। शुद्ध भक्त किसी के अंदर बुराई देखते नहीं, चाहे वो मूर्तिमान कली क्यों न हो। और उन्होंने जो उनके अंदर अच्छाई देखी है ना, वो वास्तव में श्रवण करने योग्य है। बहुत ही सुंदर गुण यहाँ पर बताया गया कलयुग का, कि कलयुग में क्या होता है, कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति। कुशलान का मतलब होता है शुभ। शुभ अगर इस कलयुग का एक बहुत ही सुंदर महान गुण है कि अगर आप शुभ करने की इच्छा करते हो तो क्या होता है, आशु सिद्ध्यन्ति। आशु का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत ही सिद्ध्यन्ति यानी सफल हो जाएगा। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जब सत्युग होता था उसमें क्या होता था कि अगर जब तक कोई शुभ कार्य करता नहीं था ना, तब तक उसको उसका फल नहीं मिलता था। जाहिर सी बात है, शुभ हमने सोच लिया कि भाई मैं कल दान दूंगा, और फिर तब तो दान तब तक देंगे नहीं, तब तक तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा ना। लेकिन पहले जमाने में ऐसा ही होता था, शुभ कार्य जब तक किया नहीं जाता था तब तक उसका फल नहीं प्राप्त होता था। लेकिन अशुभ कार्य खाली सोच भी लिया जाता था, अशुभ कार्य यदि कोई ये सोचता था कि कल मैं कोई अपराध करूंगा, मांसाहार करूंगा, कल सुबह उठेंगे और मांसाहार करेंगे, उसी टाइम पर उसको अपराध लग जाता था। उसी टाइम पर यमराज जी लिख लेते थे, चित्रगुप्त जो है ना उसकी डायरी में लिख, भले सुबह को नहीं भी करते थे, दूसरे दिन भले वो अपराध नहीं करते थे, लेकिन उसके खाते में ये लिख दिया गया कि उसके विचारधारा कितनी अपवित्र है। कोई भी गलत कार्य कि मतलब आज हम सोच सकते हैं, अगर अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम नरक से कभी निकलते नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलयुग का यह गुण है, कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति। आपने जैसे ही अच्छा सोचा आप उसी टाइम पर उस कार्य में सफल हो गए, भले आपने वो कार्य किया नहीं। आपने ये सोचा कि भाई आज मैं 16 माला जप करूंगा, ये और बात है कि आप 16 माला जप नहीं कर सके, आपने खाली सोच लिया ना, तो आपका चित्रगुप्त ने लिख लिया भाई ठीक हो गया, इसने दिल से ही सोचा। ऐसा नहीं कि झूठी झूठी में आप सोचते रहो, नहीं, वो आपके हृदय में बैठता है, वो जानता है कि आप कितना नौटंकी हो, कितना सिंसियर हो। हम अपने आप को कभी कृष्ण से छुपा नहीं सकते, उनके सामने हम पूरे खुले आईने की तरह साफ साफ दिखता है हमारे हृदय के अंदर जो कुछ है ना। तो यदि हम सोचते हैं कि अब से हम 16 माला जप करेंगे, सुबह सवेरे मंगला आरती पर पक्का उठेंगे, कुछ भी हो जाए मंगला आरती मिस नहीं करेंगे, और मैं जो भी खाऊंगा पहले भगवान को अर्पण करूंगा, रोज रोज मैं भगवान की अच्छे से सेवा करूंगा, अच्छा अच्छा भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान को अर्पण करूंगा, डेली भागवतम को श्रवण करूंगा, डेली श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा, भगवान के पवित्र नाम का जप करूंगा, सबको प्रचार करूंगा। मतलब खाली मन में सोच लिया तो कलयुग का यह गुण है कुशलान याशु सिद्धयंती, उसी टाइम पर आप सिद्ध हो गए। भले वो कार्य करने का आपको अवसर नहीं भी मिला, किसी कारण से आपको वो अवसर नहीं मिला, आपने सोच लिया कि अब मैं भागवत कथा में कहीं पर भागवत कथा रखी हो, आप सोचो कि अब मैं डेली भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी, एक दिन भी मिस नहीं करूंगी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि आपके घर पे मेहमान आ गए या कुछ और हो गया, आप जा नहीं सके, लेकिन तीव्र जो इच्छा आपके मन में हो गई ना, तो समझो हो गया। कुशलान याशु सिद्धयन्ति भागवतम के शब्द है, और हमने जैसे पहले पढ़ा था कि सद्यो रिद्य वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषुभिस् तत्क्षणात्, जिस टाइम पर आप ये सोच लो कि मुझे श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, भले उसको श्रवण ना करो, उसी टाइम पर भगवान आकर आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये शुद्ध विचार भी नहीं आता आज हमारे अंदर। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर किसी को बोलते हैं कि भाई आपको भागवत कथा में आना है, यहाँ पर हम हर सैटरडे को भागवत कथा करते हैं, आप कृपया हम आइएगा सेवा का अवसर, उसी टाइम पर मन में ये सोचते ना बाबा असा वट टाइम कौन है, मतलब कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि अब रोज रोज कौन भागवत कथा, हर हफ्ते जाना पड़ेगा, ये हमसे नहीं होगा, है ना। अच्छी विचारधारा भी नहीं है, विचार भी हमारे इतने गंदे हो गए हैं कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया के कार्यों से हमें फुर्सत नहीं है, उसी तरह मक्खियों की तरह गंदगी में ही आनंद लेते हैं। भगवान के विषय में श्रवण करने के विषय में सोचना, आज हम देखते हैं जहां पर भगवद गीता की क्लासेस होती है, भागवतम की क्लासेस होती है, वहां पर गिनोचने लोग आते हैं हमारे पास, है ना, इतने ज्यादा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों के मन में इच्छा तक नहीं होती है भगवान के विषय में श्रवण करने की। लेकिन भागवत यह गवाही देता है, यह प्रमाण है कि हमारे मन में खाली इच्छा भी हो जाए ना, उसी टाइम पर हम उसमें कुशलन याशु सिद्धयन्ति, सिद्धि प्राप्त हो गई, सफलता प्राप्त हो गई। लेकिन नेतराणि कृतानि च, लेकिन यदि आप इस कलयुग में कोई अपवित्र कार्य करने की इच्छा करते हो, अशुभ, इतराणी मतलब अपोजिट कार्य, जो अशुभ कार्य अगर आप करने की इच्छा करते हो, तब चित्रगुप्त पूछता है यमराज से, ये अशुभ कार्य करने की इच्छा कर रहा है, देखो मार्केट से मांसाहार लेकर आया है, अभी मार्केट से लेकर आया है तो बनाएगा ना, तो यमराज जी बोलते हैं बनाया है, बोला नहीं, बोला बनाया नहीं तो फिर खबरदार लिखना नहीं। फिर वापस वो फ्रिज से निकालता है और बनाने के लिए तैयार होता है, मसाले वसाले पीस लिए, तो चित्रगुप्त बोलता अब लिख लो, बोला बनाया, बोला नहीं बनाने की तैयारी करी, बोला नहीं। फिर वो बना लेता है, फिर बोलता है चित्रगुप्त यमराज को अभी लिखो, बना लिया उसने, बोला खाया, बोला नहीं अभी नहीं खाया, अभी तो बना लिया है बस, तो बोला अभी मत लिखना। फिर बोला टेबल पे लगा दिया है, अभी बस महाप्रसाद शुरू करने वाला है, तो अभी लिखूं, बोला खाया है, बोला नहीं, बोला जब तक मुंह में नहीं जाएगा ना तब तक मत लिखना। मतलब जितना भी आप अपराध के, आज अगर हम ये सोचें कि अगर वो पहले वाला सिस्टम अभी चल रहा होता कि जैसे ही कुशलानि अनुसिद्ध्यन्ति, पहले क्या होता था नेतराणि आशु सिद्धयन्ति, जो नेतराणी होते थे, जो अशुभ कार्य होते थे, वो जैसे ही सोचते थे वैसे ही आप उस वो लिख लेता था। कलयुग से पहले जो युग होते थे, आप अपवित्र सोच करते थे और यमराज जो है चित्रगुप्त को बोलते लिखो, अभी सोचा ना इसने कि गंदा कार्य करने वाला है, मांसाहार करने वाला है, परस्त्री के साथ संग करने वाला है, या शराब पीने वाला है, या कुछ भी गलत करने वाला, लिखो फौरन लिखो, उसी टाइम पर लिखवा देते थे। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम सोच सकते हैं एक दिन में कितने अशुभ कार्य करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ये तो अलग बात है कि प्लानिंग छूट जाती है, होती नहीं है, अपराध से बच जाते कभी, लेकिन अपराध की केवल प्लानिंग करने से यदि सजा प्राप्त होने वाली होती इस युग में, तो लगता था कि नरक का जो भगवान ने ये जो नरक बनाया होगा ना लोक,
वो कम पड़ जाता। बाहर है ना वेटिंग में सारे खड़े होते क्योंकि इतने अपराध तो हमारे हृदय में चल रहे होते हैं। अपराधों से भरा हुआ ये हृदय है, लेकिन फिर भी आज भगवान ने इस कलयुग के, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, जो विद्वान है वो कलयुग की जय मनाते हैं कि कलयुग की जय हो, जो हम जैसे पतितों में भी सर्वश्रेष्ठ जो लोग हैं ना वो आए हैं कलयुग में, जो हर क्षण अपराध की तरह, अपराधियों की तरह सोचते रहते हैं, अशुभ करने के विषय में सोचते रहते हैं, उनके लिए तो ये कलयुग जो है वो सबसे ज्यादा सुइटेबल युग है, क्योंकि इसमें अपराध जब तक किया नहीं जाता तब तक आपको लिखा नहीं जाएगा। नेतराणि कृतानि यत्, जब तक आपने किया नहीं तब तक वो अशुभ कार्य लिखा नहीं जाएगा। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है, दुर्भाग्य ये है कि आज हमें जो संग मिल रहा है उस संग के कारण हम अपवित्र कार्यों को करने के लिए बहुत जल्दी से हृदय से एग्री हो जाते हैं, इच्छा हो जाती है गलत कार्य करने की, और शुभ कार्य करने की इच्छा ही मन में उत्पन्न नहीं होती है। आज जो अजामिल ने जो एक सीन देखा था एक बार, वो सारे सीन्स जो हैं वो सारा दिन हमारे संतानें देखती रहती हैं, तो मन में अपवित्र भावना ही चल रही होती है क्योंकि संग खराब है ना। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इस कलयुग का फायदा उठाना चाहिए, ऐसा संग ढूंढना चाहिए जिस संग में रहकर एटलीस्ट हमारे मन में अच्छा कार्य करने की इच्छा तो उत्पन्न हो, क्योंकि कुशलान याशु सिद्ध्यन्ति, कुछ अच्छा अगर हम कार्य करने की इच्छा भी करेंगे तो भी वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कैसे भी करके हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न कर दे कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान से प्रेम करना है, शास्त्र को अध्ययन करना है, और किसी तरह से ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि कल अभी भागवतम के आगे जाकर अंतिम श्लोकों में हमें पता चलेगा, कलेर दोषे निधे राधन ह्यस्ति एको महान गुण, के भले इस कलयुग में करोड़ों करोड़ों दोष हैं, दोषों का समुद्र है, मगर इसके अंदर एक महान गुण है, वो क्या है, कीर्तना देव कृष्णस्य, बात को समझना है कि अगर हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा, मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्त संग ये जो अपराध हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे, परम व्रजेत हमारी परम विजयी प्राप्त होगी हमें, यानी जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा यदि हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। कीर्तन कैसे होता है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कीर्तन दो तरह से होता है, एक तो जब हम भगवान के पवित्र नाम को गाते हैं, और दूसरा जब हम भगवान की कीर्ति को श्रवण करते हैं, जब हम भागवत कथा भी सुन रहे होते हैं, तो वो भी कीर्तन है। तो हमें कैसे भी करके मधुमक्खी की तरह बनना, यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सारंग इव सार बुक, वो सारंग की तरह मधुमक्खी की तरह सार को ग्रहण करने वाले होते हैं, वो ढूंढते हैं सारे संसार में, ढूंढते हैं कि कहीं से मुझे कोई शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो, जहां से मैं मधु को प्राप्त करूं, जहां से मैं वास्तविक आनंद को प्राप्त करूं, और उस आनंद को प्राप्त जब शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उनके संग रहते रहते हमारे मन में जो अपवित्र इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और फिर कुशल इच्छाएं जो शुभ इच्छाएं हैं, भगवान की भक्ति की इच्छाएं वो उत्पन्न हो जाएंगी, और जैसे ही उत्पन्न हो जाएंगी कुशलान याशु सिद्धंति, उसी टाइम पर हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी, उसी टाइम पर भगवान हमारे हृदय में आकर के हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।